मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 17 अगस्त 2016 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं विवेक विशाल, आप मुंगेर बिहार से हैं, रमेश कुमार, आप खगड़िया बिहार से हैं और राम बोल यादव, आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। तो विवेक, रमेश और राम बोल, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों फिर से एक वही सूचना जो कल मैंने आप लोगों को दी थी, मैं आज भी उसे दोहराना चाहूंगा और वह है कि लाइफ मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है अब उसे हमने डेली ऑडियो गाइडेंस के बिल्कुल आखिरी में शिफ्ट कर दिया है। आखिरी में का मतलब ईमेल से ठीक पहले वाले हिस्से में। और स्वागत के बाद सीधे सीधे हम AIR न्यूज पर और फिर न्यूज़पेपर्स पर, फिर लाइफ मैनेजमेंट पर और फिर लास्ट में ईमेल जो आप लोगों के फीडबैक होते हैं उस पर आते हैं। तो दोस्तों ये सूचना है ताकि आप भ्रमित न हो। मुझे इस बात की खुशी है कि आज जितने भी मेल मुझे पढ़ने को मिले उसमें 90% स्टूडेंट्स ने जो मेल आए हैं इस बदलाव का स्वागत किया है। और मुझे अच्छी बात यह लगी कि उस स्वागत के पीछे उन्होंने अपने अपने तर्क भी दिए हैं, जिसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूं। अच्छा लगा, ठीक नहीं लगा, पहले जैसा होता, ये तो सामान्य सी बातें हैं। और सच पूछे तो ये उन लोगों के लिए हैं जो केवल अपना मत देते हैं, लेकिन तार्किक मत सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि ठीक नहीं लगा तो क्यों नहीं और ठीक लगा तो क्यों, इसके बारे में जब आप तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रखते हैं तो मित्रों उसका ज्यादा असर होता है। और मुझे खुशी है कि आप सब ने अपनी बात, ज्यादातर लोगों ने अपनी बात तार्किक रूप से रखी है। तो मित्रों फिलहाल चूंकि ज्यादातर स्टूडेंट इस बदलाव को पसंद कर रहे हैं तो इसीलिए अभी एकेडमी इसी बात के पक्ष में है कि इस बदलाव को जारी रखा जाए। तो दोस्तों अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज आप लोगों ने सुने होंगे, मैं केवल दो न्यूज के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा और आज फिर हम न्यूज़पेपर पर आएंगे। और न्यूज़पेपर में मित्रों मैं अब थोड़ा सा और एडिशन मैंने किया है, वो अभी आप देखेंगे। दोस्तों एक जो न्यूज थी हमारी, खासकर पाकिस्तान और भारत, आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए। और सच पूछे तो पठानकोट एयरबेस में जो अटैक पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने किया था उसके बाद से ये संबंध फिर से एक बार डिरेल्ड होते नजर आ रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से दोनों देशों की समस्या का निराकरण एक दोस्ताना अंदाज में किया जाए। लेकिन सच पूछे तो पाकिस्तान पर सेना का इतना जबरदस्त दबाव है कि शायद वह एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खुले मन से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। मित्रों कारण चाहे जो भी हो लेकिन यह दुर्भाग्यजनक जरूर है। जो इम्पोर्टेंट बात है आज की दोस्तों वो ये कि अब आप देख रहे हैं कि एक नया कंपोनेंट इस पूरे के पूरे विवाद में आया है और वह है बलूचिस्तान। पहली बार आप लोगों ने शायद इतने प्रोमिनेंटली इसका नाम सुना हो, बलूचिस्तान। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर बलूचिस्तान के लोगों को इस बात के लिए आभार उसके बाद आभार व्यक्त किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के भाषण को पसंद किया। और खासकर इसके माध्यम से बहुत लोग जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये भारत की विदेश नीति में आया हुआ एक बदलाव है, ऐसा लोग मानकर चल रहे हैं। लेकिन अब देखिए क्यों कितना सस्टेन कर पाता है। 15 अगस्त के भाषण में आप लोगों ने सुना होगा मित्रों कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर ये बात कही कि किस तरह से भारत विश्व के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है और आपसी विवादों को वो बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसी 15 अगस्त को कहां वो कश्मीर के आजादी का दिवस या कुछ ऐसा घोषित कर दिया, ओपनली घोषित कर रहा है, जबकि वो अभी कम से कम दावा करने की स्थिति में नहीं है कि वो कश्मीर उसका है। पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत के हिस्से में था, जिस पर उसने अधिकार कर रखा है, भारत ने उसके बारे में कहा, बलूचिस्तान के बारे में कहा और गिलगित के बारे में कहा। दोस्तों, ये जो बलूचिस्तान है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा और इस पर मैं आज आपको बहुत अच्छी प्रेस क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लीज आप उसको देखें। अगर आप मैप देखेंगे तो देखेंगे कि भारत का जो हिस्सा है, खासकर जो उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है, उत्तर, वो काफी कुछ आपको बलूचिस्तान के नजदीक मिलेगा। इसके बाद फिर उसकी अपनी सीमा ईरान और उन सब से शुरू हो जाती है, अफगानिस्तान से मिलती हुई शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो यह है कि आपको चाहिए कि आप बलूचिस्तान को मैप पर अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें, आपके दिमाग में वो चीज हो। बलूचिस्तान में हो क्या रहा है मित्रों, कि एक तरीके से पाकिस्तान वहां ह्यूमन राइट्स का बहुत उल्लंघन कर रहा है, उनके जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो भेदभाव उनके साथ हो रहा है, वो बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां बलूच के लोग रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बलूचिस्तान के लोग अपने आप को काफी कह लीजिए कि दमित महसूस कर रहे हैं, और एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं उनके मन में पाकिस्तान से अलग होने की एक छटपटाहट सी भी है, जो पाकिस्तान की अपनी समस्या है, नो डाउट। वैसे मित्रों, अगर सही रूप में देखें तो उनका अपने देश की समस्या है और उससे अपने वो अपना निपटेंगे। भारत को इससे कोई लेना देना भी नहीं है और भारत अब तक कोई लेना देना उसने रखा भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि बार बार भारत के कश्मीर को लेकर के सवाल उठाता रहा है, इसलिए पाकिस्तान भी ये नहीं कह सकता नैतिक रूप से कि भारत बलूचिस्तान की बात क्यों कर रहा है। मित्रों, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। बलूचिस्तान शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है और जो ये बातचीत में अब आने लगा है, भाषणों में आने लगा है, आपने न्यूज में सुना कि हमारे मंत्री जी ने भी यही कहा कि खासकर बलूचिस्तान वाले मामले में हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक मत होकर बात करें, क्योंकि अगर हमारी अपनी राजनीतिक पार्टियां ही आपस में मतभेद में आ गई तो इसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा। तो ये बलूचिस्तान अब शुरुआत इसकी हुई है, ये किस तरीके से आगे बढ़ती है अब हम इसको देखते हैं, लेकिन मेरा कहना अभी सिर्फ इतना है कि आप इस टॉपिक को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर इस पर निगाह रखें। जो कुछ भी अवेलेबल होगा अखबारों में वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा, न्यूज में जो आता रहेगा वो आपको मैं सूचित भी करूंगा, उसकी हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। और आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के तनाव की जो स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान में सार्क देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पहले ये लग रहा था कि हमारे वित्त मंत्री जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि शायद वित्त मंत्री उसमें भाग लेने न जाएं और उसकी जगह पर एक सचिव, जो हमारे आर्थिक मामलों के सचिव हैं, उनको भेजा जाएगा। और इससे पहले जबकि हमारे गृह मंत्री जी गए थे तो उनका अनुभव वहां बहुत कटु रहा, पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। मित्रों, यहां मंत्री का सवाल नहीं होता, यहां राष्ट्र का सवाल होता है। हमारे गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ पाकिस्तान का जो भी व्यवहार रहा, सही मायने में वो पाकिस्तान का भारत के साथ व्यवहार रहा है। तो आपको खासकर इन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो दूसरी खबर थी दोस्तों, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के थी, और वो खबर ये थी कि जो बिहार है उसने सर्वसम्मति से, वहां की विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है और दूसरा राज्य बन गया है जिसने जीएसटी को पारित किया। यहां मैं आपको थोड़ा सा संविधान संशोधन के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, ये आपको रट जाना चाहिए, अनुच्छेद 368, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, और इसी के आधार पर यह भी कहा जाता है कि भारत का संविधान एक कठोर संविधान है, मतलब आसानी से इसे बदला नहीं जा सकता। उसमें प्रोविजन ये है मित्रों, इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसमें ज्यादातर भ्रमित हो जाते हैं। उसमें भ्रमित इस बात से होते हैं कि 2/3 और कुल सदस्यों का बहुमत, इसको नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से सीधे सीधे 100 के आंकड़े को लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। मित्रों, हमारे पास दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। मान लीजिए कि दोनों की सदस्य संख्या 100-100 है, समझाने के लिए परसेंटेज में आप समझ जाएंगे, इसलिए मैं 100-100 रख रहा हूं। अब होगा यह कि अगर लोकसभा में संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव पारित होना होगा तो उसको दो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहला ये कि कुल सदस्यों का बहुमत, यानी 100 सदस्य हैं तो कम से कम 51 सदस्य उससे एग्री करें, और उपस्थित सदस्यों का 2/3, यानी कि जो मतदान वहां करने के लिए हाजिर हैं उनका 66%, तब जाकर के एक हाउस उसे पारित करेगा। इसको इसलिए रखा गया है मित्रों कि मान लीजिए कि लोकसभा में उस दिन केवल 40 ही सदस्य आए, एक ही पार्टी के मान लीजिए 40 लोग आए और 40ों के 40ों उसे एग्री कर गए तो सामान्य तौर पर तो 100% हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि उपस्थित सदस्यों का तो 100% हो गया लेकिन कुल सदस्यों का बहुमत नहीं हुआ। कुल सदस्यों का बहुमत कितना हो गया? 51, तो 51 नहीं हुआ तो वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये इसीलिए आपको संविधान की किताब में लिखा हुआ मिलेगा कि कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत तथा सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3, ये दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ये एक सदन में होगा और बिल्कुल यही बात मित्रों दूसरे सदन में भी लागू होगी, राज्यसभा में भी बिल्कुल यही शर्त लागू होगी। जब वहां से पारित हो जाएगा तो फिर राज्यों को भेजा जाएगा, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस विधेयक भेजा गया है। अब आधे से अधिक राज्य इसे पारित करेंगे, यानी कि हमारे पास अगर अभी 29 राज्य हैं तो लगभग 15 राज्य, कम से कम 15 राज्यों की सहमति इस विधेयक पर होनी चाहिए। यदि यह सहमति नहीं बनेगी तो यह विधेयक पारित नहीं हो सकेगा। फिर जब 15 से अधिक राज्य इसे 15 या 15 से अधिक राज्य इसे पारित कर देंगे तो यह प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उनके साइन करते ही यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा। तो यह हमारी एक संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है मित्रों, ये आसान नहीं है। अभी मैं इसकी कठिनाई पर नहीं जाऊंगा, खासकर एक फेडरल स्ट्रक्चर में और जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें ये क्यों इतना कठिन अब हो चुका है, इस पर मैं अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा। कभी हम जब संविधान पर बात करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गया है कि रह गई है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो विधेयक है वो पारित ही होगा, अब लगभग ये कन्फर्म सा हो गया है। दोस्तों AIR न्यूज से बस इतना ही, अब मैं आता हूं न्यूज पेपर पर। मित्रों मैं आज थोड़ी सी आपसे प्री के बारे में भी बात करूंगा, न्यूज पेपर्स की आज मैं आपको बहुत क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, आज आपको इतना सारा काम देने के लिए बहुत प्रेस क्लिपिंग्स आज अवेलेबल हैं। मैं क्या करूं, जब ज्यादा लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक रहेगा तो मैं प्रोवाइड कर देता हूं, और जब नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती आप लोगों को देने से बचता भी हूं। मैं ये नहीं मान करके चलता कि आज तो बहुत कम है तो कुछ तो उनको दिया जाए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, ये मेरी पॉलिसी में नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहता हूं कि आपके लिए सभी को पढ़ना अनिवार्य नहीं है, आप देखिए कि आपके लिए कौन सा जरूरी है। हो सकता है बहुत से ऐसे टॉपिक हों जो आप पहले से जानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं। मेरे पास बहुत से मेल भी आते हैं दोस्तों जिसमें कहते हैं कि सर आप न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स कम करें तो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा मेच्योर फीडबैक है। मैं मानता हूं कि हाँ कम किया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि मेरी समस्या ये है कि इस चूंकि डेली ऑडियो गाइडेंस से नए नए स्टूडेंट लगातार जुड़ते चले जाते हैं तो मैं किस तरह के अपने श्रोता को अपना लक्ष्य बनाऊं, वो जो 2 साल से इसे सुन रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, या वे जो 2 दिन पहले ही जिन्होंने सुनना शुरू किया और सिविल सर्विस की तैयारी करनी शुरू की है। तो इसलिए मित्रों मुझे तो सबको लेकर चलना पड़ता है, आप लोगों को अपने अपने स्तर पर इसके बारे में निर्णय लेने की छूट है और वही ज्यादा तार्किक भी होगा, आप अपने ढंग से निर्णय लें। मित्रों मैं 2-3 चीजें न्यूज़पेपर्स की अब अलग तरीके से थोड़ी सी आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जिस तरह से आपके इस बार सिविल सर्विस के में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी साल नहीं हर साल उस तरह के पूछे जाते हैं, लेकिन उस तरह के प्रश्नों को मैं जनरली इग्नोर कर देता था, जो छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं उनको इग्नोर कर देता था। और मैं आपको सैद्धांतिक रूप से ये सलाह देना चाहूंगा कि आप भी उसे बहुत ज्यादा अहमियत देकर न चलें, छोटे छोटे प्रश्न कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए पूछा कि किस राज्य ने अभी तितली को अपना राष्ट्रीय जो भी है वो घोषित किया है, इस तरह का कोई एक प्रश्न था तितली को, है ना, राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय जीव घोषित किया है। अब मित्रों ये जिस राज्य ने किया होगा वहां के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत आसान है क्योंकि वहां के अखबारों में खूब छपा होगा, उस पर बातचीत भी हुई होगी, बहस भी हुई होगी, लेकिन दूसरे राज्यों के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब क्या किया जाए, देखिए अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ेंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे, बड़ी चीजों को पकड़िए। आफ्टरऑल आपका स्कोर 55 से ऊपर होना, 55 के आसपास होना चाहिए और वो आपको सिलेक्ट करा देगा, तो 45 जो छोड़ने की गुंजाइश होती है उसमें आप ऐसे को डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने अब ये फैसला किया है कि कुछ जो मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट लगेंगे कम से कम मैं उनकी आपके सामने चर्चा कर दूं, तो आपके दिमाग में वो रहेगा और अगर कभी एग्जाम में आ गया तो हो सकता है कि आप उसे हल करके आ सके। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स भी अब मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों ऐसे फैक्ट्स में मैं एक दो बातें आज दो तीन चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो मित्रों उत्तराखंड जो सरकार है उसने एड़र एपण क्लस्टर विकसित करने का फैसला किया है। एपण क्लस्टर, एपण क्या है, है ना, हम एपण पर जाएंगे। ये वहां की एक उत्कृष्ट पारंपरिक लोक कला है, लोक कला है, और इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे बंगाल में इसी को अल्पना कहा जाता है, गुजरात में सतिया कहा जाता है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में इसको रंगोली कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में इसको चौक पूर्णा भी कहा जाता है, राजस्थान में इसी को मांडना कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में भुग्गुल कहा जाता है। तो ये कुछ नाम है, तो वही उत्तराखंड में एपण कहा जाता है। तो उन्होंने किया केवल ये है कि इस कला को बढ़ावा देने के लिए वो एक एरिया लेंगे, तीन चार गांव को चुनेंगे और जहां की आबादी ज्यादातर आदिवासी और दलित की होगी, और फिर ये अपने एपण से जो उत्पाद तैयार करेंगे ताकि वहां की लोक कला को बढ़ावा मिल सके। तो ये एपण दोस्तों एक पारंपरिक लोक कला है जो उत्तराखंड सरकार उसका क्लस्टर विकसित करने जा रही है, और ये क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम उपग्रह छोड़ा है, क्वांटम सैटेलाइट छोड़ा है। ये इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि ये जो है प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। हैक प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है कि आप इससे सूचनाएं चुरा नहीं सकेंगे, और अगर बाय द वे कुछ ऐसा करेंगे भी तो सूचनाएं नष्ट हो जाएंगी, ये इसकी विशेषता होगी। इसका नाम दिया है क्वांटम उपग्रह, और यह माना जा रहा है कि आने वाले सालों में 10 साल में लगभग जो युग आ रहा है वो क्वांटम उपग्रह का ही युग होगा, ताकि सूचनाओं के बारे में आप देश सुरक्षित रह सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम कितना ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल भी हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने तो अब साइबर प्रयोगशालाएं शुरू की हैं ताकि इस अपराध को नियंत्रित किया जा सके। दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी रियो ओलंपिक चल रहे हैं और भारत का प्रदर्शन तो काफी निराशाजनक है, उसकी समीक्षा हम अंत में करेंगे। लेकिन इस बीच में जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उनको कम से कम कहीं ना कहीं आपके जेहन में मौजूद रहना चाहिए। जैसे एक नाम आप लोगों को मालूम होगा फेल्प्स का। फेल्प्स कौन है, किस खेल में है, किस देश के हैं, क्यों इनका नाम इतना चर्चित हुआ, तो ये आपको अभी ही लेते हुए चलना चाहिए, जानते हुए चलना चाहिए। फेल्प्स आपको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के खिलाड़ी हैं, तैराक हैं, बहुत ही जबरदस्त तैराक हैं, और अभी भी उन्होंने तैराकी में गोल्ड मेडल जीता है। अकेले ही व्यक्ति हैं जिनके पास शायद 28 गोल्ड मेडल्स हैं, 28 टोटल मेडल्स हैं, जिसमें गोल्ड ही 23 है। मतलब अकेले आदमी के पास इतने मेडल्स हो गए हैं जो 100 देशों के पास भी नहीं है अकेले, मतलब एक ऐतिहासिक व्यक्ति फेल्प्स। इनके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले भी बात की थी अगर आपको ध्यान हो तो। इसके बाद दूसरा नाम अखबारों में आपने पढ़ा होगा, उसैन बोल्ट, ये जमैका के खिलाड़ी है उसैन बोल्ट, और इनको तो धरती पर बिल्कुल उड़नदस्ता माना जाता है जो इन्होंने टाइमिंग्स दी। हालांकि इस बार के टाइमिंग 100 मीटर की दौड़ में पिछले से थोड़ा सा ज्यादा समय उन्होंने लिया है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त दौड़ एथलीट, और पिछले बार तो जब इन्होंने लंदन ओलंपिक में जो समय निकाला था उसके बाद से तो इन पर रिसर्च किया गया था कि इतने हार्स पावर की एनर्जी कैसे पैदा हो सकती है, क्योंकि 100 मीटर ही दौड़ना है, 9 से 10 सेकंड के बीच का फर्क में सब काम करना है, और इतनी देर में इतना स्पीड ले लेना, तो उस पर बहुत से रिसर्च भी हुए। रिसर्च के क्या परिणाम हुए मित्र मुझे मालूम नहीं है। इसके बाद एक नाम दीपा कर्माकर फोर्थ आई हैं, हमारे यहाँ के जिम्नास्ट हैं, इनका नाम आप जानते हैं, तो इन पर इनका नाम भी आपको कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ नाम थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा अखबारों को ध्यान में रखेंगे और मुझे अगर कोई ऐसी चीज मिलेगी तो मैं उनका उल्लेख इस प्रकार से करता रहूंगा। जहां तक प्रेस क्लिपिंग्स का सवाल है मित्रों, आज मैंने जैसा कि कहा मैं ढेर सारे प्रेस क्लिपिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें बलूचिस्तान को लेकर के इम्पॉर्टेंट लेख हैं, एडिटोरियल कमेंट भी हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के आपने अखबारों में पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने सरकार की इस बात के लिए कहीं न कहीं प्रश्न किया है कि हमने जजेस के नाम भेज दिए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन सरकार उनकी अनुमति नहीं दे रही है, जबकि लगभग 45% जो पोस्ट हैं हायर कोर्ट की वो खाली हैं। तो चूंकि जुडिशियल हमारे सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और पूछा भी जाता है अक्सर जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में, तो उससे रिलेटेड एडिटोरियल कमेंट है। एक डॉक्टर भरत झुंझुनवाला का एक बहुत अच्छा लेख है मित्रों की, दक्षेस को छोड़ने का समय, सार्क सम्मेलन आप देख रहे हैं कि सार्क सम्मेलन में ही अभी हमारे वित्त मंत्री जी को जाना था वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे एनालिटिकल तरीके से इन्होंने बताया है कि भारत सरकार को अब क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि दक्षेस पर ये आरोप लगता है कि ये उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है जिस तरीके से दुनिया के दूसरे संगठन काम कर रहे हैं और एक्टिव हैं, उस वह एक्टिवनेस दक्षेस में दिखाई नहीं देती है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान को माना जाता है कि पाकिस्तान जो भी सहमति बनती है उसमें अपनी टांग अड़ा करके और उस सहमति को खत्म कर देता है। तो इस तरीके से मित्रों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन प्रेस क्लिपिंग्स को देख लेंगे। दोस्तों अब हम आते हैं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। मित्रों जब हम दिमाग की बात करते हैं, जैसे हम लोग फूलों के बारे में ही कह रहे थे कि किसी की कोई सोच है कि नाली में फूल पड़ेंगे तो क्या करेंगे, कोई जमीन से उठा करके चढ़ाने को तैयार है, वैसे जब आप फूल खरीद करके बाजार से लाते हैं तो आपको पता नहीं है कि वो कहां से उठाए गए हैं, तो ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए कि हम चाहे उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं चाहे उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है ना। मैं अब फूलों की बात नहीं कर रहा हूं, उसे मैं खत्म कर चुका हूं, उसका केवल एक रेफरेंस आपको दे रहा हूं कि वह व्यक्ति जो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वह व्यक्ति जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, वह व्यक्ति जो द्वंद में है, इन सब के पीछे कारण क्या है, कौन है वह जो एक्सेप्ट करा रहा है और कौन है जो एक्सेप्ट नहीं कराने दे रहा है। मित्रों अगर हम ग्रंथों की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो वो तो सभी में एक ही जैसा लिखा हुआ होगा कि फूल वहां के चढ़ाने चाहिए या नहीं। तो हम उन ग्रंथों की बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, या मान भी रहे हैं नहीं भी मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं सब एक ही मत एक ही किसी भी इशू पर रखते, अलग अलग मत क्यों होते हैं। मित्रों जब हम अलग अलग मतों की बात करते हैं तो वो परेशानी का सबब बनता है, हमको लगता है कि ये परेशानी हो रही है, लेकिन सच पूछे तो जो रिचनेस है जो समृद्धि आती है वो अलग अलग मतों के कारण ही आती है, और सच पूछिए तो एक ही इशू पर जो अलग अलग विचार आते हैं उसका कारण ये सिर्फ होता है मित्रों कि हमारे अपने दिमाग की बनावट कैसी है। हम सारी चीजों को चाहे हम उसे स्वीकार करें अस्वीकार करें या बीच की स्थिति में रहें, केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने जो अपने दिमाग को ढाला है जो बनाया है किस तरीके से ढाला है किस तरीके से उसे बनाया है। मित्रों सवाल यह नहीं कि हमारा दिमाग कैसा बन गया है, देखिए हमारा दिमाग जो भी है जो हमारा तरीका है जो हमारी फिलॉसफी बन गई है चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया विकसित हो गया है, नो डाउट उसमें हमारे जीन्स, हमारे अपने जीन्स का हाथ है, यानी माता पिता की वंशानुगत जो हमें करेक्टर मिले हैं उसका हाथ है, हमारे परिवार का हाथ है, हमारे समाज का हाथ है, माहौल का हाथ है, हमारे एजुकेशन का हाथ है, इन सब का अपना अपना योगदान है और उनसे हमारा दिमाग बन चुका है, यानी कि हमारी दृष्टि जो देखती है चीजों को, देखने के बाद जो समझती है वह तैयार हो चुकी है। याद रखिए कि जो अर्थ होते हैं वो वस्तु में नहीं होते, अर्थ हमारे दिमाग में होता है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। वस्तु तो वस्तु है, जो अर्थ निकाला जा रहा है वह हमारे दिमाग के द्वारा निकाला जा रहा है। किसी के लिए वो पत्थर है, आपके लिए वो ईश्वर है। अगर वो पत्थर है तो सबके लिए होना चाहिए, ईश्वर है तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। किसी के लिए चावल कुछ भी नहीं है, उबाल के खाने की चीज है, तो किसी के लिए चावल अक्षत है, ईश्वर पर चढ़ाने की चीज है। किसी के लिए फूल जूड़ों में लगाने की चीज है, श्रृंगार की चीज है, तो किसी लिए ईश्वर की आराधना की चीज है। तो ये मित्रों जो अर्थ निकलते हैं, याद रखिए वो दिमाग से निकलते हैं। और अगर आपको चीजों के अर्थों को बदलना है तो बहुत सीधी सी बात है कि आपको अपने दिमाग को बदलना होगा, अदरवाइज चीजों के अर्थ को आप नहीं बदल सकते। और यदि आप कुछ समय के लिए उसे बदल भी लेंगे तो वो केवल एक टेम्परेरी बदलाव होगा, वो थोड़े से वक्त का बदलाव होगा, फिर से आपका दिमाग उस पुराने ही ढर्रे पर आ जाएगा। और यही होता है, यही होता है भारत में तो खासकर यही होता है। मुझे आश्चर्य होता है जो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न बनकर के जो लड़के लड़कियां लव मैरिज करती हैं, अल्ट्रा मॉडर्न ही है, मतलब आज भारतीय समाज अब तो चलिए काफी ओपन हो गया, लेकिन जब वो लव मैरिज कर लेते हैं तो इसके बाद उनकी जो जीवन प्रणाली होती है वो बिल्कुल उसी तरीके से ढल चुकी होती है जैसे कि एक पारंपरिक पारिवारिक प्रणाली होती है। मैं यहां कोई पारंपरिक प्रणाली की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आप जब उन चीजों को नए तरीके से लेकर के आए हैं तो उनके अर्थ भी नए निकालिए, और यही कारण है कि फिर उनमें तनाव पैदा हो जाता है क्योंकि अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। आंखों ने तो देख लिया है ये मॉडर्निज्म है, ये आधुनिकता है, लेकिन दिमाग ने नहीं देखा है, दिमाग ने स्वीकार ही नहीं किया है, दिमाग स्वीकार कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि दिमाग जिद्दी है, ये दिमाग बहुत जिद्दी है, वो जरूरत से ज्यादा ही जिद्दी है। दूसरे को तो आप समझा लेंगे, बच्चे को तो समझा लेंगे, समझ भी जाएगा, उसको डरा धमका भी लेंगे, वो मान जाएगा, लेकिन ये दिमाग ओह गॉड ये नहीं मानता है। इसके जिद्द को समझिए, इसको बदलना, इसको समझाना बहुत मुश्किल काम है मित्रों। और मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी स्पेशली कम से कम जो नौजवान साथी हैं जिनके सामने पूरा भविष्य खुला पड़ा है, पूरी दुनिया आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है, कम से कम आप तो अपने दिमाग के इस जिद्द के सामने खुद की जिद्द को बड़ा बना दीजिए, उसके जिद्द को चलने मत दीजिए। देखिए कि कैसे आप उसे अधिक से अधिक तार्किक बना सकते हैं, अधिक से अधिक वैज्ञानिक बना सकते हैं, अधिक से अधिक व्यावहारिक बना सकते हैं, और अधिक से अधिक आप उदार बना सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं अपने आप को। क्योंकि जो संकीर्ण मानसिकता होगी मित्रों, संकीर्ण मानसिकता आपको विशाल जीवन कैसे दे सकती है, किसी को भी कैसे दे सकती है। अगर मेरी बनियान छोटी है, 32 नंबर की है, तो वो मोटे शरीर वाले में फिट हो ही नहीं सकती, उसके लिए तो मुझे 40-42 सेंटीमीटर की बनियान चाहिए, सीधी सी बात है। 5 नंबर का जूता किसी 6.5 फीट के आदमी के पैर में नहीं आ सकता, वो संकीर्ण है उसके लिए। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारा दिमाग संकीर्ण होगा तो अर्थ संकीर्ण निकलेंगे, अर्थ छोटे निकलेंगे। दिमाग बड़ा होगा, अर्थ बड़े निकलेंगे। और हम लोगों के साथ दिक्कत यह है मित्रों, क्योंकि हम सब एक सामंतीय दिमाग लेकर पैदा हुए हैं, हालांकि इसमें अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, तो वो सामंतीय दिमाग हमें बड़ा अर्थ निकालने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि सामंतीय जो चेतना होती है सामाजिक रूप में वो काफी छोटी चेतना होती है, छोटी यानी कि संकीर्ण चेतना होती है। महिलाओं के प्रति भावना जो आप देखते हैं, या दलितों के प्रति जो आप अभी समाज में जो एक उथल पुथल सी देख रहे हैं, वो क्या है? क्या हम उनके बड़े अर्थ निकाल पा रहे हैं? क्या हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं ना, अभी हम मनुष्य को जाति के रूप में देख रहे हैं, हम मनुष्य को उसके प्रोफेशन के रूप में देख रहे हैं, हम मनुष्य को उसके आर्थिक स्थिति के रूप में देख रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग को उसके अनुकूल ढाला नहीं है। दोस्तों मैं ये बात विशेषकर इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप सिविल सर्विस मेंस दे रहे होंगे, एसे लिख रहे होंगे, इंटरव्यू बोर्ड के सामने जवाब दे रहे होंगे, तब आपके दिमाग की उदारता का फैलाव जितना ज्यादा होगा, आप जितना ज्यादा उदार होंगे, आप देखेंगे कि आपके दिमाग में तार्किक जो तर्क हैं उतने ज्यादा आएंगे, उतने ज्यादा आपके दिमाग में तर्क आएंगे। अपने दिमाग को मित्रों अपना गुलाम बनाइए, दिमाग के गुलाम मत बनिए। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, चंद्र अग्रवाल जयपुर से, बबलू गोविंद वाले हैदराबाद से, नफीस अहमद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, योगेश तिवारी, किशन मेवाड़ा पालिताना गुजरात से, वीरेंद्र देहरादून से, पुष्पेंद्र कुमार जमालपुर बिहार से, राजपाल, सूरज जादौन मुरैना मध्य प्रदेश से, संजय गुड़गांव से और निकिता गोपालगंज बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।